अगले कवि का नाम है नागार्जुन। प्रश्न, नागार्जुन का जीवन परिचय अपने शब्दों में प्रस्तुत कीजिए या नागार्जुन की भाषा शैली का वर्णन कीजिए। उत्तर, आधुनिक हिंदी काव्य साहित्य में कवियर नागार्जुन का महत्वपूर्ण स्थान है। नागार्जुन धरती के अनूठे गायक हैं। अपने स्वर को खेत खलिहान तथा किसान मजदूर तक ले जाने के आकांक्षी हैं। उनकी कविताओं में प्रगतिशीलता भी काव्य और उपन्यास दोनों क्षेत्रों में उन्होंने अपनी प्रतिभा प्रदर्शित की है। युगधारा, सतरंगे पंखों वाली प्यासी पथराई आंखें, भस्मासुर आदि उनके महत्वपूर्ण काव्य हैं। नागार्जुन की कविता मानव जीवन के साथ गहन भाव से संयुक्त है। मानव जीवन अपने समस्त हर्ष अमर्ष सौंदर्य कुरूपता स्वप्नों तथा आकांक्षाओं के साथ उनकी कविता में स्थापित हो उठा है, इसलिए उनकी रचनाएं सब प्राण एवं जन संवेद्य बन सकी हैं। उनकी कविता ने जीवन को अमृत और हलाहल दोनों का रसपान किया है। नागार्जुन मूलतः जन कवि हैं। जनमत एवं जन इच्छा की मनोभावों के प्रस्फुटन उद्वेलन उनके सुख दुख को बड़े मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। आधुनिक काव्य कला भाव दर्शन में कविवर नागार्जुन ने निसंदेह रूप से अत्यंत ही सजीवता सार्थकता एवं सावयता के माध्यम से प्रस्तुत किया है। दीनहीन निर्धन गरीब असहायों के जीवन दर्शन का वास्तविक चित्रण करते हुए कवियर ने लिखा है, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक काने कुतिया सोई उनके पास, दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद। उपयुक्त काव्य का अवलोकन करने के बाद यह सिद्ध हो जाता है कि कविवर नागार्जुन जन उद्वेलन की मार्मिक करुणा गाथा से पूर्णतः उद्बोधित हैं। उन्होंने समाज एवं व्यक्ति के घरेलू संबंध से लेकर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानव मात्र उनके चरित्रों का उनके क्रियाकलापों का अत्यंत ही गहन अध्ययन किया है। वर्तमान समय में नेताओं का चरित्र चित्रण करते हुए आपने लिखा, हमें सिखतो शांति और संयम जीवन की, अपनी खातिर करो जुगाड़ अपरिमित धन की, बेच बेच कर गांधी जी का नाम, बटोरो ओट हिलाओ शीश निपोरो खीस, बैंक बैलेंस बढ़ाओ। समाज के बुद्धिजीवी स्कूल मास्टर पत्रकार लेखक आदि कलम के सिपाहियों के दैन्य दशा पर कवि काफी मर्माहत है। वे एक स्कूल मास्टर के दीनता का वर्णन करते हुए लिखते हैं, पेशा से प्राइमरी स्कूल का मास्टर था, तनख्वाह भी 30 रुपये सो भी नहीं मिली, मुश्किल से काटे हैं एक नहीं दो नहीं 9-9 महीने। इस प्रकार कविवर नागार्जुन भूख दरिद्रता दैन्यता का अत्यंत ही मार्मिक एवं दर्दनाक चित्रण चित्रित किया है। कविवर नागार्जुन जहाँ एक ओर मानव जीवन आम रोजमर्रा जीवन के वास्तविक क्रियाकलापों का चरित्र चित्रण किया है, वहीं उन्होंने काव्य तुलका के माध्यम से मानव मन की रागात्मक और सौंदर्यमयी छवियों को अंकित करने वाली कविताएं जिनकी संवेदना एवं कलात्मकता बेजोड़ है और जिनमें जन सामान्य के मंगलमय भविष्य के प्रति कवि ने आस्था व्यक्त की है, बालक के दंत छवि का वात्सल्य राग को प्रस्तुत करते हुए कवि ने लिखा है, तुम्हारी यह दंतूरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूल धूसर तुम्हारे ये गात। कवि छायावादी कवियों की भांति प्रकृति के अनुपम रहस्यों का उद्घाटन एवं प्राकृतिक छवि का अत्यंत ही सजीवता के साथ वर्णन प्रस्तुत करते हैं। जैसे ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बालारुण की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो। कविवर नागार्जुन की कविताओं में सामाजिक निरुपमता, राजनैतिक विश्रृंखलता, धार्मिक रूढ़ियों पर व्यंग करने वाली कविताएं अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। एक मार्मिक व्यंग करते हुए कहते हैं, पहन ले दम का मुकुट, पचा नहीं पाए ग्लानी और अपमान, ले नहीं पाए प्रतिशोध, क्षमा हो क्षमा करता चला जाए, ऐसा भी वृद्धि क्या, ऐसा भी मन क्या। उपयुक्त विवेचनाओं से ज्ञान होता है कि कविवर नागार्जुन में छायावादी एवं छायावादोत्तर दोनों ही प्रकार काव्य तत्वों का सम्मिश्रण है। एक और वे प्रकृति के परम रहस्यों एवं सौंदर्य के उपासक नजर आते हैं, तो दूसरी ओर अति आधुनिक कवियों की भारतीय वर्तमान काल समस्त उहापोह, मीन मेख एवं जीवन दरिद्र को भी अपने काव्य में प्रस्तुत किया है। जहाँ तक कला पक्ष का प्रश्न है, श्री नागार्जुन की भाषा का प्रयोग हुआ है। विचारों के भावावेश के खान पतन के अनुरूप उनकी भाषा में विविधता है। कहीं तो वे बहुत क्लिष्ट एवं दुरू हो जाते हैं और कहीं कहीं वे गवई और चलतू भाषा का भी प्रयोग कर लेते हैं। एक उदाहरण देखने योग्य है, हजार बाहों वाली शिशिर विस्कनिया, उतरी लेकर सांसों में प्रलय की वन्या। संस्कृत के तत्सम एवं तद्भव भाषा का प्रयोग बहुत ही विविधता प्रदान करती हैं। वर्णात्मक स्वरूप अत्यंत रोचक भाषा में प्रयोग हुआ है। एक उदाहरण देखने योग्य है, शत शत निर्झर निर्झरणी कल, मुखरित देवदारु कानन में, सोणित धवल भोज पत्रों से। जब कभी आप दैनिक एवं वर्तमान जीवन का चरित्र चित्रण करते हैं, तो आपकी भाषा में उर्दू, फारसी, अंग्रेजी भाषा के सभी चलतू शब्द प्रयोग किए हुए मिलते हैं। जैसे बटोरी वोट, हिलाओ शीश, निपोरो खींच, बैंक बैलेंस बढ़ाओ। नागार्जुन ने अपनी काव्य में मूलतः व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया है। वर्णात्मक, भावात्मक, विचारात्मक, विवेचनात्मक शैली का विभिन्न प्रकार के काव्यों को प्रयुक्त किया गया है। अलंकार की दृष्टि से नागार्जुन की कविताओं में अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान जैसे अलंकारों का खुलकर प्रयोग हुआ है। विस्मयादि बोधक मानवीकरण जैसे अलंकारों का भी प्रयोग सुंदर एवं सजीव रूप में हुआ है। रसों में करुण रस, हास्य, विभत्स, भयानक, रौद्र का मूलतः प्रयोग हुआ है। वर्णात्मक एवं सौंदर्य वर्णन में श्रृंगार रस का अमिट छाप मिलता है। छंद मूलतः मुक्तक है, किंतु दोहा, चौपाई, रोला जैसे स्वरूप भी आपकी कविताओं के स्वरूप में पाए जाते हैं। नागार्जुन की पहली कविता का शीर्षक है यह दंतुरित मुस्कान। यहाँ कवि ने एक बालक के उगे हुए दंत के साथ मुस्कान को केंद्रित करके काव्य को प्रस्तुत की है। एक ओर वह धूल से भरे बालक की तुलना वैसे ही किया है जैसे तालाब में कोई पारिजात खिला हुआ है। कवि स्वयं भ्रमित है कि इस बालक का भविष्य क्या होगा, इसकी वास्तविकता माँ ने ही बताया। कभी उस माँ को धन्यवाद देता है कि वह उसे वास्तविकता से अवगत करा दी। जब कभी माता की अंगुलियाँ उसे मधुपर्क का रसास्वादन कराती हैं, तो वह बड़े ही प्रेम से देखता है। इस प्रकार वह अत्यंत प्रसन्न होकर मुस्कान बिखेरता है, तो देखने में अत्यंत ही शोभायमान होता है। इस प्रकार महाकवि तुलसीदास ने भगवान के दातों का वर्णन करते हुए लिखा है, वरदंत कपंगति कुंदकली अधराधर पल्लव खोलन की, चपला चमके घनबीच जगे छवि मोतिन माल अमोलन की। इस प्रकार से कवि का एक भाव है, धूल भरे अतिशोभित श्याम जू, तैसी बनी सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अगना पग, बैजनी बाजत पीर कछौटी। उपयुक्त दोनों कविताएं भक्त कवि के हैं। उसी प्रकार नागार्जुन ने एक छोटे बालक की, जो अत्यंत ही धूल से भरा हुआ है, उसके दंतुरित मुस्कान के प्रभाव को प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। कविता का संपूर्ण भाग इस प्रकार से है। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूल धूसर तुम्हारे ये गात छोड़ कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जल जात, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा, कठिन पाषाण छू गया तुमसे कि झरने लगे बड़े से फालिका के फूल, बांस था कि बबूल। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आँख लूँ मैं फेर, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी मान माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख मैं न पाता जान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। धन तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क, देखते तुम इधर कर खीमा और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। व्याख्या। श्री नागार्जुन द्वारा रचित यह दंतुरित मुस्कान एक प्रयोगवादी काव्य है, किंतु छायावादी विचार का प्रभाव है। कवि बालक के मुस्कान के साथ दंतों के चमक से उचित प्रसन्नता को ऐसी शक्ति के रूप में प्रस्तुत कराता है जो एक मृतक में भी प्राण डाल देने की क्षमता को सजोए हुए है। अर्थात उस बालक के दंतुरित मुस्कान को देखकर कोई उदास के उदास व्यक्ति भी अपने गम को भुलाकर सजीवता से आवृत हो जाता है। धूल से भरे हुआ सुंदर बालक ऐसा प्रतीत होता है कि मानो तालाब से कोई कमल निकल पड़ा हो, उसके झोपड़ी में खिल गया हो। जैसा कि कवि ने कहा कि वह बालक का मुस्कान मृतक को भी जीवित कर देता है, वैसे ही झरने के जल के स्पर्श होने से मानो सेफालिका का फूल खिल गया है। उसकी वास्तविकता क्या है, उसका स्वरूप क्या है, जब तक उस जड़ को नहीं जाना पहचाना नहीं पाया, जब माँ के सुंदर स्नेह को उसे मधुपर को प्रदान कर रही थी, तो उसके स्नेह से आवृत होकर दंतुरित मुस्कान को जो देखा, जो निसंदेह बहुत सुंदर प्रतीत होता है। प्रस्तुत कविता में अतिशयोक्ति, उपमा, रूपक, अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। कवि की कविता में छायावाद एवं प्रयोगवाद दोनों का सुंदर सम्मिश्रण है। वात्सल्य एवं शांति रस का प्रयोग हुआ है, इसमें मुक्तक छंद का प्रयोग हुआ है। नागार्जुन की अगली कविता का शीर्षक है बादल को घिरते देखा है। अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है, तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलील में समतल देशों से आ आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विस्तंतु खोजते हंसों को घिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है, ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बाला रुण की मृदु किरणें थी, अलग बगल स्वर्णाभ शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल के चीर अभिशप सापित बेबस उन चकवा चकवी का बंद हुआ क्रंदन, फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे सैवालों की हरी धरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है। बादल को घिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है, दुर्गम बर्फानी पहाड़ी घाटी में शत सहस्त्र फुट की ऊंचाई पर अलख नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित हो होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। कहाँ गया धनपति कुबेर वह, कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर कौन बताए वह छाया मैं, बरस पड़ा होगा न यहीं पर, जाने दो वह कवि कल्पित था। मैंने तो भीषण जाड़ों में नभ चुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझानील से गरज गरत भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। शत शत निर्झर निर्झणी कल मुखरित देवदारु कानन में शोणित धवल भोज पत्रों से छाई हुई कूट के भीतर रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे इंद्रनील की माला डाले शंख सरी के सुघड़ गलों में कानों में कुवले लटकाए सतदल लाल कमल वेणी में रजत रजित मणि खचित कलामय पान पात्र द्राक्षा सब पूरित रखे सामने अपने अपने लोहित चंदन की त्रिपटी पर नरम निदाग बाल कस्तूरी मृग छलों पर पलथी मारे मदिरा अरुण आँखों वाले उन उन्मद किन्नर किन्नरियों की मृदुल मनोरम अंगुलियों की वंशी पर फिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। व्याख्या एवं विशेषताएं। प्रस्तुत काव्य बादल को घिरते देखा है कविवर श्री नागार्जुन द्वारा रचित एक मुक्तक है। प्रस्तुत कविता में छायावाद का पूर्ण प्रभाव है। प्रस्तुत कविता मूलतः वर्णनात्मक है, जिसमें कवि बादलों के विभिन्न स्वरूपों एवं विभिन्न ऋतुओं में उसके भिन्न भिन्न क्रियाकलापों को प्रस्तुत किया है। कवि बादलों के जीवन में परिवर्तनों का वर्णन करते हुए कहता है कि धवलागिरी शिखरों पर किस प्रकार से घन आच्छादित होते हैं, उनके आच्छादन से स्वरूप बनता है, उसका प्रभाव उसने बड़े ही निकटता से देखा है। जब बादल की बूंदें मानसरोवर झील में खिले कमल पुष्पों पर मोतियों की कड़ियों के समान विकसित होते हैं, उनके सुंदर छवि को भी देखा है। यह बूंदें भी बादलों का एक ही रूप है। हिमालय पर्वत के शिखरों से पिघलकर उसके गोद में अनेक झीलें अवतरित होती हैं। पावस एवं ग्रीष्म ऋतु में उन झीलों के जल के ऊपर आनंद किलोल करते हुए हंसों के विचरण एवं जल में तैरते हुए नृत्य करते देखा। यह दृश्य उस पल और भी आह्लादित करता है जब आकाश मंडल में घन आच्छादित रहते हैं, जो और भी अधिक छविमान प्रतीत होते हैं। बसंत ऋतु में प्रातःकाल की बेला में जब शीतल मंद सुगंध समीर प्रवाहित होता रहता है, साथ ही साथ आकाश में बाल रवि किरण अपनी स्वर्णिम आभा को सर्वत्र बिखेरती है, वह अत्यंत ही सुहावना प्रतीत होता है। कभी इस सुखद प्रातःकाल की बेला में आनंद का राग और भी आह्लादित करता है, क्योंकि रात्रि के आगमन के कारण जो चकवाचकवी पक्षी एक दूसरे से अलग होकर कष्टमय समय व्यतीत कर रहे थे, वे भी आकाशमंडल स्वर्णिम रवि किरण के आच्छादन के पश्चात एक दूसरे से मिलकर आनंद केली में लिप्त हो जाते हैं। उनके परम आनंद की अनुभूति को जाना है, क्योंकि यह भी स्वर्णिम किरणों से युक्त धन आच्छादन के पश्चात ही देखने को प्राप्त होता है। कवि ने अत्यंत मनोरम दृश्यों का वर्णन विभिन्न मुद्राओं एवं अवस्थाओं में प्रस्तुत किया है। जब आकाश में बादल छाते हैं तो दुर्गम बर्फ से युक्त हजारों फीट ऊंचे पहाड़ों के मध्य उस आनंदित स्पंदित नृत्य कस्तूरी मृगों को बड़े ही चिढ़ते हुए देखा है, क्योंकि वह अपने आमोद प्रमोद के समय किसी भी अन्य जन को उसमें हिस्सा लेते नहीं देखना चाहता है। फिर भी कभी का विचार है कि इस आकाश मंडल के नीचे घने बादलों के मध्य विभिन्न स्थलों पर विचरण करने वाले भिन्न जीव जंतुओं का भिन्न स्वरूप होता है जिसे उसने बड़े ही मार्मिकता के साथ अवलोकन किया है। नागार्जुन वर्तमान काल के अपनी काव्यधारा के अद्वितीय कवि हैं। उन्होंने यथार्थ का निरूपण छायावाद के आधार पर किया। महाकवि कालिदास द्वारा रचित मेघदूत काव्य में धनपति कुबेर के अलकापुरी का जो वर्णन प्रस्तुत किया गया है वह नागार्जुन की दृष्टि से एक कपोल कल्पित कथा थी, किंतु वह एक ऐसे मेघमंडल के स्वरूप का वर्णन प्रस्तुत किया जो कैलाश पर्वत के शिखर पर टकराकर बूंदों के रूप में गिरते हुए देखा है, जो वैज्ञानिक यथार्थ है। उस बादल को गर्जन है, कड़क है, विद्युत की चपलता है। उसका संघर्ष एक नए स्वरूप का दर्शन कराता है। कवि की कल्पना का अंत नहीं होता। प्रस्तुत खंड में कवि ने देवदारु कानन में जहाँ सत सत झरने कलकल की आवाज करते हुए भोजपत्रों के कुटीर का अत्यंत ही प्रभावशाली वर्णन किया गया है। उस कुटिया के अंदर विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे पुष्प आच्छादित हैं। ऐसे रम्य वातावरण में किन्नर किन्नरियों के स्वरूप का बड़ा ही सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है, जिनके गले में शंख के समान सुंदर माला है और कानों में कुंडल पहने हुए हैं। उनके समक्ष चांदी के पात्र में द्राक्षासव से भरा रखा हुआ उनके मस्तक पर चंदन का टीका लगा हुआ है। मृत छालों पर पलथी मारकर उन्माद से युक्त होकर किन्नर एवं किन्नरियां वंशी धारण कर आमोद प्रमोद एवं नृत्य कर रहे हैं। ऐसे रम्य वातावरण में धन अपने रूप से आकाश मंडल को आच्छादित कर और भी अधिक रम्य पूर्ण बना रहा है। उपयुक्त काव्य पूर्णतः वर्णनात्मक है। इसमें कवि ने बादल के आच्छादित एवं उसके प्रभाव का प्रस्तुतिकरण किया है। अनेक अलंकारों से सुसज्जित भाव का दिग्दर्शन किया है। अनुप्रास, उपमा, रूपक, अत्युक्ति आदि अलंकार का प्रयोग हुआ है। भाषा अत्यंत ही परिमार्जित है। शैली वर्णनात्मक एवं विवेचनात्मक एवं भावात्मक है, छंद मुक्तक है। यहाँ श्रृंगार रस का सुंदर प्रयोग किया गया है। नागार्जुन के अगली कविता का शीर्षक है आकाल और उसके बाद। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। कई दिनों तक काने कुतिया सोई उनके पास। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद। धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद। चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। कौए ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। कविता की व्याख्या एवं विशेषता। प्रस्तुत पंक्तियां अकाल और उसके बाद नामक शीर्षक से उद्धृत की गई हैं। इसके रचयिता नागार्जुन जी हैं। व्याख्या। प्रस्तुत कविता में कवि ने अकाल से पश्चात की दयनीय दशा का वर्णन बड़े मार्मिक शब्दों में किया है। कवि कहता है कि कई दिनों के बाद चूल्हे में आग तक नहीं जली और चक्की में कुछ पिसा नहीं गया। कई दिनों तक कानी कुतिया को कहीं भी एक अन्न का दाना नहीं मिला। सर्वत्र उदासी की भावना छाई हुई थी। घर के प्राणी मात्र छिपकलियों को देख रहे थे और चूहे तक को भोजन नहीं मिल पाया। अंत में कवि कहता है कि कई दिनों के बाद घर में कुछ अन्न के दाने आए, तब चूल्हे में आग जलाई गई। घर के सभी प्राणी के आँख चमक उठी कि आज उन्हें कुछ खाने को मिलेगा। पशु पक्षी कौवे ने भी अपने पंख फैलाकर आवाज भरी। कवि ने बड़े मार्मिक भाव का प्रस्तुतिकरण किया है। अकाल में भूख से पीड़ित जनों के जो स्वरूप का चित्रण किया गया है वह अत्यंत हृदय विदारक है। काव्य की भाषा पूर्णतः यथार्थवादी कटु सत्य है। उसका सजीव चित्रण कवि ने बड़े ही उच्च कोटि की भाषा में किया है।